தான் ஹனானம் அசலானம் திருவானம் நித்தியானம் புதஸ்வதானம் ஞானஸ்வதானம் ஆனந்த ஹீயானம் ஆனந்தி சச்சித்தானம் கனம் நிர்மல் நிராகார் பரமாத்மாக்கு ஜான கா விஷய பதிலா ஜாதா ஹை யே விஷய ஐசா ஹை ஜோ பாத் பதிலாயி ஜாவே பாணி சே கஹா ஜாவே साथ साथ में उसी प्रकार से थी मैं निष्कृषता चला हुआ तो अपने आप ही ध्यान नहीं जा सकता जो कोई परिश्रमित नहीं करना पड़ता नहीं बातों से ध्यान लग गया ध्यान के लिए स्थान आना चाहिए जहां बाहर का कोई प्रकार का अल्लाह बुला सब सुनाई नहीं दे एकांत स्थान हो पवित्र स्थान हो जिसे स्वर्गासन बन है जिस देश में जिस स्थानीय मनुष्य हो उसके लिए वहीं कोई खोज कर लेनी चाहिए बांकुड़ा में तो बहुत अच्छा वन है चक्रधरपुर के में बहुत अच्छा स्थान वन रहने के लिए बने एकांत इसी प्रकार से थी चाहे कोई मकान हो चाहे वन हो दीवालय है शमशान भूमि है या तुलसी वन है या पहाड़ की गुफा हो या कोई एकांत स्थान पवित्र स्थान वन बगीचा राज ऐसे स्थान के बीच के ना ध्यान जो साथ है उनसे मदद ले गए बैराग से इसमें बहुत मदद मिलती है सत्संग से बड़ी भारी मदद मिले सत्संग को अभाव हो तो जो ज्ञान वैराग विषय की पुस्तक है उससे बहुत सहायता मिले उसके अनुसार अपना ध्यान जमा रहे एकांत स्थान में जाकर के और आश्रम से बैठे चाहे सिद्धासन हो पद्मासन हो स्वस्तिक आसन हो या कोई भी आसन हो सुखपूर्वक जिसमें बैठे स्थिरम सुगम आसनम महर्षि पतंजलि के है कि ऐसा आसन होना चाहिए जो स्थिर हो और सुखपूर्वक हो यानी पलाठी मार करके बैठे अचल होकर के मेरे दिल को शोभा बनाकर सीधा होकर के श्रंकार श्रोग्री काया जो है ग्रीवा मस्तक इनको एक सूत्र में गज की नापक अचल करके स्थिर करके सीधा करके बैठ तीन घंटा एक आसन से बैठा रहे तो उस पुरुष को आसन जीत कहते हैं कि उसने आसन को जीत लिया आसन जीत जो है इससे मदद मिलती है ध्यान के में ऊपर तीन जो है इसमें बहुत सहायक है संकल्पों को अभाव और इस विषय का जो विचार है ध्यान के विषय का उससे भी मदद मिलती है इन सबसे मदद ये नया जप है वो भी इसमें सहायक है एकांत में बैठ करके आसन से एकांत में बैठ करके और मन में जो कामना है संकल्प है वासना है इनको एकदम त्याग कर दे संकल्प है पर भगवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान् शेषतो मनसेन्द्रिय ग्रामीण समन्ततः शनि शनि पर भेद बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंसम कृत्वा किंचित विचिन्त्य एकांत के ना निराकार के ध्यान के विषय में ये श्लोक है संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी जो कामना है उनको सर्वथा अशेषता से त्याग करे मानो उसकी गंध भी नहीं रहे कोई डब्बी में किस्तूरी रखी जा और उसको वापस निकाल ले तब उसकी गंध वहां रह जाती तो गंध भी नहीं रहनी चाहिए मान अशेषता से उसकी चिकनाई भी नहीं रहनी चाहिए किंचित मात्र भी उसको समझो कि देश भी नहीं रहना चाहिए आभास भी नहीं रहना चाहिए कामना को तो सिर था कामना को त्याग कर करके, तो सिर इंद्रिया की जो वृत्तियां हैं, ये अपने विषयों की तरफ जो जा रही है, विषयों के साथ में इनका जो संयोग है वो एकदम सबका संयोग तोड़ दे रहे, संबंध विच्छेद कर दे रहे, विषयों और इंद्रियों को जो परस्पर को जो संबंध है वो एकदम रोक दे रहे मन के द्वारा। मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से जो संबंध है इसको एकदम संबंध विच्छेद कर दे रहे, अर्थात नेत्रों से देखो बंद कर दे, नेत्र निचले रहे, कानों से सुनो बंद कर दे, कान एकदम संजो की रोक दे रहे। इसी प्रकार से थी सब इंद्रियों को अपने विषयों से रोक करके आपने कछुए की भांति स्थिर हुए, ये कछु अपने सब इंद्रियों ने समेट ले रहे। इसी प्रकार से इंद्रियों को विषयों से उपसंहार कर ले रहे, इसको नाम प्रत्याहार भी है। और ध्यान के में यह चीज बहुत ही मददकारक है। भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 24 का श्लोक है, संकल्प पर भगवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसि इन्द्रिय ग्राम द्विनिय समन्तता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को अशेषता से थी त्याग कर करके यानी उससे रहित होकर के इंद्रिय समूह को विषयों से मन के द्वारा अच्छी प्रकार से संयम करे, यानी उपरम हुए, यानी इंद्रियों को समझ विच्छेद कर रहे, इसको प्रत्यार कहते हैं। उसके बाद शनि शनि रूप रमित बुद्धिया धृति गृहतया आत्म संस्मरण कृत्वा न किंचित भी चिंतित, ये 6 अध्याय का 25 का श्लोक है। इसका ये भाव है आस्ते आस्ते मन को समझा करके और संसार के विषयों से रहित करे, आस्ते आस्ते उपरम हुए प्रति को प्राप्त हुए। जैसे पहले इंद्रियों को विषयों से रहित किया, इंद्रियों विषयों के संबंध का समझ निषेद कर दिया, ऐसे ही मन का जो समझ विच्छेद करे मन के विषयों से, यानी एकदम संकल्प रहित हो, शुरू में तो कामना से रहित हो और फिर फूलना से रहित हो, संकल्प रहित हो, संसार के चिंतन में दोष दिखला करके अपने लिए संसार को चिंतन ही घातक है। ध्यातु विषयानुपुंस समस्ते सुख जाए थे, विषयों के चिंतन करने से उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति सब अनर्थों का मूल है। यह बात समझा करके और आस्ते आस्ते और उपरम है उपरति को प्राप्त हुए। सात्विक धृति के द्वारा धृत्या या धारित्य मन प्राणी ने क्रिया योगिना विचारिणा धृति सापार सात्विकी। सात्विक धृति की बात गीता की 18 अध्याय के 33 के श्लोक में है। इसका यह भाव है मन प्राण और इंद्रियों की जो क्रिया है जिस धृति के द्वारा धारण किए जावे, योग के साधन के द्वारा और जिस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया धारण हुए उसका नाम सात्विक धृति है। इंद्रियों की क्रिया जो इंद्रियां विषयों का सेवन करे वो इंद्रियों की क्रिया है, जैसे रूप को देख लो आंख की क्रिया, शब्द को सुन लो कान की क्रिया, तो इन विषयों से रहित कह करके फिर मन की जो क्रिया है कि संकल्प विकल्प करो या कोई मन में फूलना होने, तो इनसे रहित होना है वही सात्विक दृष्टि है। सात्विक दृष्टि के द्वारा ही मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया समझो की त्यागी जा सके। तो साथ में प्राण की क्रिया भी है, तो संकल्प के त्याग कर देने से प्राण स्थिर हो जाते हैं और प्राणों को स्थिर करने से संकल्प को त्याग अपने आप हो जावे, तो मन प्राण और इंद्रिया की जो क्रिया है इनसे रहित है। ऐसी जो द्वितीय दृष्टि से बुद्धि जो है मैं करके युक्त है, शनि शनि ऊपर मेट बुद्धिया धृति गृहित बुद्धिया सात्विक दृष्टि करके संयुक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि से मन को उस परमात्मा के मां समाविष्ट कर दे। और मन को परमात्मा में लगाने के बाद और उस परमात्मा के स्वाग किंचित मात्र भी दूसरी चीज को चिंतन न करे, यानी संसार को चिंतन न करे, बस उसी के मां मन को एकदम लगा देगा, समावेश कर देगा मन को परमात्मा के स्वरूप में। कैसे जो परमात्मा का स्वरूप है, सत चित्तानंद धन परमात्मा है। परमात्मा कभी समय यह सुनो कि परमात्मा है, कैसे जो परमात्मा है यो ज्ञान भलाई मत हो, केवल यो भाव रहना चाहिए कि परमात्मा है। भगवान स्वयं अपने आप ही कृपा करके मदद करेंगे कि मैं कैसे हूँ। अपने तो पहले यो एक प्रकार से भाव करे कि भगवान है, परमात्मा है, ऐसा भाव करे कि परमात्मा के स्वर दूसरी वस्तु है ही नहीं, एक परमात्मा के स्वर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इस भाव के बीच के वहां दूसरे वस्तु ने गुंजाश नहीं दिया। परमात्मा को तो भाव और सबको अभाव, परमात्मा के स्वर कोई वस्तु है ही नहीं। तो भाव रूप जो परमात्मा को जो स्वरूप है, मन अस्तित्व जिसको कहते हैं, सत कहते हैं, बस परमात्मा है और उसके स्वर कोई वस्तु नहीं है, सबको अभाव कर दे, सबने भुला दे, संकल्प रहित हो जाए, फूरना रहित हो जाए, ठीक है। पर वो कैसे हुआ परमात्मा को स्वरूप, तो वो चेतन है। चेतन किसको कहे कि जो जानने में आवे जो पदार्थ वो जट, और जानने वाला है वो है चेतन, जिसको दृष्टा साक्षी चेतन ज्ञाता केवल चिति शक्ति, बस उस चेतन के स्वर कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा चेतन है, इस शरीर के वहां सब चीज जैसे जड़ है, आत्मा को छोड़ करके शरीर जो है इसे सूक्ष्म प्राण है, प्राण से भी सूक्ष्म इंद्रियां है, इंद्रियां से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा ज्ञाता है, साक्षी है, सबका ज्ञाता है। बाहर भीतर आने वाली जो हवा है इसका नाम प्राण है, इस शरीर जो स्थूल इसके अंग है, ये इंद्रियां है, ये इंद्रियों का गोलक है, इसमें रहने वाली इंद्रियां है, और सब इंद्रियों का जो चिंतन करने वाला इंद्रियों परिणाम के विषय को संकल्प करने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला वो मन है। मन जिससे जाना जाए वो बुद्धि है, और बुद्धि का भी ज्ञाता है सो आत्मा है कि ये मन है, ये बुद्धि है। इस प्रकार से इनको भी जो जानने वालों वो है सो आत्मा है। आत्मा को छोड़कर के मन बुद्धि तक सारे पदार्थ जड़ हैं, क्योंकि सब जानने में आते हैं, सब ये है। तो इन सब को एकदम भुला करके इनसे राहित होकर के जो चीज है वो आत्मा है, जो सबका ज्ञाता दृष्टा साक्षी केवल चेतन। वेदांत के सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। दृष्टि चेतन का नाम आत्मा है, समष्टि चेतन का नाम परमात्मा है। जिससे घड़े का आकाश और महाकाश, घड़े इतनी दूर में रहने वाला जो आकाश है वो दृष्टि आकाश है, और महाकाश और समष्टि आकाश है। तो परमात्मा तो समष्टि आकाश की जो है, और आत्मा जो सो दृष्टि आकाश घटाकाश की जो, और वो परमात्मा महाकाश की जो। इसका जो भेद है वो आकाश का और महाकाश का घट की उपाधि से है। घट फूट जावे तो समझो कि घटाकाश महाकाश एक ही जगह एक है ही, वो तो ग्रह की उपाधि से अलग सा प्रतीत होता है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम विभक्तेषु विभक्तों में न्यारे न्यारे नाना प्रकार के शरीरों के बीच के वर्ण आत्मा एक ही अविभक्त रूप से है। हजारों गणों के बीच में एक ही आकाश है, इस प्रकार से हजारों प्राणियों के बीच के वहां परमात्मा सबकी आत्मा रूप से एक ही है। हेम आत्मा गुड़ा केश है सर्वभूता सहित है, हे गुड़ा केश अर्जुन सारे भूतों के हृदय में स्थित में आत्मा रूप से हूँ। इस प्रकार से थी सबकी आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें मन को समावेश कर दिया, मन को समावेश कर दिया तो फिर एक प्रकार स्थिति रह गया। यह संसार तो मन के संकल्प में ही है, संसार तो उसके साथ ही गई, तो परमात्मा चेतन है। तो यहाँ घटस्थानी क्या है, ये तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों के संबंध से ही ये जीवात्मा परमात्मा से अलग है। तीनों शरीरों का मूल कारण है अज्ञान, जिसको अविद्या कहते हैं, उसके नाश से ही समझो कि इन तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद हो जाता है। उस अविद्या का नाश होता है विद्या से, विद्या नाम अज्ञान का, उस अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से। परमात्मा का जो यथार्थ जो ज्ञान है उससे अज्ञान का नाश हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान ये कि परमात्मा है और परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। परमात्मा को छोड़कर सारे पदार्थ जड़ है, ऐसा समझ के उनसे रहित हो जाना, उनको बुला देना, उसके बुलाने के साथ ही परमात्मा ही रह जाते हैं, परमात्मा का ध्यान आप ही हो जाता है, तो कोई चीज बचती नहीं एक परमात्मा के सिवा। वो ज्ञान भी अज्ञान का नाश करके स्वतः शांत हो जाता है। ज्ञान भी तो बुद्धि की वृत्ति है, उसे जड़ पदार्थों के शामिल ही है, तो परमात्मा को जना करके केवल खुद भी शांत हो जाता है, केवल एक परमात्मा ही रह जाते हैं। तो परमात्मा जो चेतन है वो ये तो आनंद है, उस चेतन से अलग कोई आनंद वस्तु नहीं है, आनंद ही चेतन है, चेतन ही आनंद है। ये जो लौकिक आनंद है ये नहीं, ये तो नाशवान है, क्षणिक है, स्वप्नवत है, ये आनंद कोई वस्तु नहीं। ये स्वप्न के संसार में मनुष्य को सुख होता है, वो सुख कहीं नहीं है, वो माना हुआ है, कल्पना हुआ है। इसी प्रकार से थी दुख के साथ में प्रतीत होने वाला सुख है, ये तो जड़ है, मिथ्या है, कल्पित है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि कभी वो रहता कभी नहीं रहता। तो नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, जो सत पदार्थ उसका कभी अभाव नहीं होता है, मिथ्या जो पदार्थ वो कभी रहता नहीं है, तो जो चीज रहती नहीं वो मिथ्या है। तो ये सुख मिथ्या है और जड़ है और अल्प है, असली जो सुख है कुछ तो अक्षय आनंद, अक्षय सुख, अतम सुख, अप्रमेय सुख, कैसा जो आनंद है कि इस संसारिक सुख दुख से जो रहित है और केवल है, और उस आनंद का ज्ञान भी उस आनंद को ही है, अर्थात वो आनंद चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान नहीं। ज्ञाता को ही यहाँ बोध स्वरूप कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, जो देह के मन जो सबका ज्ञाता साक्षी दृष्टा चेतन जो है, वो स्वयं चेतन ही आनंद स्वरूप है, आनंद ही चेतन है, चेतन ही आनंद है, एक है तुम अलग नहीं कोई, उसके सवार कुछ भी नहीं है, उसके सिवा सब का अभाव कर देना, सबसे रहित हो जाना, ये उच्च कोटि का साधन है। रहित होने के बाद यदि फिर स्वतः ही पूर्ण हो जावे, उसके लिए भगवान उपाय बतलाते हैं। यतो यतो निश्चर्ति मनस्तंचलम स्थिरम ततस्ततो नेमे तदात्मने वसंग ने। ये मन जहां जहां जाता है वहां वहां से इसको रोक करके फिर उस परमात्मा के मां पहले की भांति ही लगा दे, पहले की भांति जैसे बताया किसने स्ने पर बुद्धिया सृष्टि गिरी पया आत्म संस्कम ने कृतवा न किंचित भी चिंत। ये छठी अध्याय के 25वें श्लोक में जो बताया अभी कि आस्ते आस्ते उपरम होकर के संसार के संकल्प से रहित होकर के वो सात्विक धृति संयुक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि से मन को उस सतचित्तानुगमन परमात्मा में लगा दे, समावेश कर दे और उस परमात्मा के स्वाय और किंचित मात्र कभी किसी का भी चिंतन नहीं करे। ऐसा होने पर फिर यदि कोई चीज की फुरना हो जावे, चिंतन हो जावे, तो उसी वक्त उसको भुला देवे, उससे रहित हो जावे। इस प्रकार से करने से संकल्प रहित फुरना रहित उसकी अवस्था हो जाए, उसका मन अच्छी प्रकार से शांत हो जावे। पूर्णा रहित जो अवस्था है मन की उसको प्रशांत मन कहते हैं। प्रशांत मन संग हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमसम। इस प्रकार के ध्यान स्थिति उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आपों से रहित हो जाता है। तो पाप से रहित कहना ये मल दोष का अभाव है। अंतःकरण के बीच के मां जो दुर्गुण और दुराचारों के संस्कार भरे हुए हैं यही मल दोष है, यही पाप है। प्रशांत मन संहिरन योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकलमसम। अकलमसम कलमस जो पाप है उससे जो रहित, जिसका रजोगुण शांत हो गया है वो शांत रजसम प्रशांत मनसम प्रकृषेण अच्छी प्रकार से जिसके मन में कोई प्रकार की फुरना नहीं होती है, इच्छा कामना फुरना संकल्प इन सब का अत्यंत जहां अभाव हो गया है ऐसे पुरुष को कहा जाता है प्रशांत मनसम। फुरना रहित संकल्प रहित जिसका मन हो गया है उसको प्रशांत रजसम, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों जिसके शांत हो गए, रजोगुण और तमोगुण दोनों जिसके शांत हो गए तो जो पाप रहित हो गया फुरना रहित आलस रहित संकल्प रहित ऐसा ब्रह्म भूत जो पुरुष है ब्रह्म के स्वरूप में जिसकी अचल भाव से स्थिति हो गई है कि जीवात्मा परमात्मा की जो एकता है उसको कहते हैं ब्रह्म भूत अवस्था। अपनी दृष्टि से जो ये अवस्था है साधन काल में उसको कहते हैं ब्रह्म भूत, और उसका जो फल है वो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति अत्यंत सुख की प्राप्ति। ऐसा ब्रह्म भूत पुरुष उत्तम सुख को प्राप्त होता है। उत्तम सुख माने असली सुख वास्तविक आनंद जिसको हम सतचित्तानंद घन कहते हैं उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुरुष फिर ख्याल करो प्रशांत मनसम जिनका मन अच्छी प्रकार से शांत हो गया है प्रशांत मनसम फुरना रहित संकल्प रहित कलना रहित ऐसा जो मन है प्रकृषेण शांत है मन जिसका उसको प्रशांत मनसम योगिनम ऐसे योगी को मन ऐसे उस कोटि के साधक को ध्यान करने वाले ऐसे योगी को उत्तम सुख सर्वोत्तम सुख असली सुख जिससे बड़े और कुछ नहीं है परमात्मा का जो स्वरूप है जो सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो स्वरूप है वही असली सुख है, वही असली आनंद है, उसको वह प्राप्त हो जाता है। कैसा पुरुष? शांत रसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसा जो पुरुष है। और एकलमुसम, जो पाप से रहित है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, ब्रह्म भूत है, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो गई है, उनकी यह सब महिमा है। तो इस प्रकार का साधन एकांत में बैठ करके करना चाहिए। युंज देव सदा आत्मान योगी वित्त कलम से सुखे न ब्रह्म संस्पर्श मत्तं तं सुखमस्तुते। युंजन एवं सदा आत्मान, सदा अपने आत्मा को इस प्रकार से लगाता हुआ योगी जो है, उच्च कोटि का जो साधक जो है, युंजन मन लगाता हुआ एवं इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को, यह अपने अंतःकरण को परमात्मा में समावेश करना ही लगाना।